दिल पक्का होने पे ही हम रो रहे हैं। तकदीरों पे राजी हो जाइए, दुनिया जन्नत बन जाएगी। मैं तो एक जुमले में इसको समेट दूंगी। ईमान बिल कदर बंदे की दुनिया को जन्नत बना देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्लाह के फैसलों पे राजी नहीं होते, जलते हैं, कुड़ते हैं, दूसरों से तकाबुल करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसको मुझसे ज्यादा क्यों मिल गया, मुझे उससे ये क्यों मिल गया, ये है और वो है, दिस एंड दैट। पूरे यकीन और शरह सदर के साथ कहें कि रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मद नबी जान। तो सवाल पैदा होता है कि ईमान बिल कदर क्या है। नंबर एक लिखिए, तकदीर अल्लाह का इल्म है। बड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। तकदीर हुक्म इलाही नहीं, इल्म इलाही है। एक उस्ताद स्टूडेंट्स के रुझानात को देखकर, उनके इंक्लाइनेशंस को देख के प्रिडिक्ट करता है, खबर देता है कि तुम बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि वो देखता है कि स्टूडेंट पंक्चुअल भी है, रेगुलर भी है और ओबीडियंट भी है, सबसे बड़ी बात है, मेहनती भी है। वो कहता है एक दिन ये बड़ा बंदा बनेगा। लेकिन एक ऐसा नॉन सीरियस किस्म का स्टूडेंट है जो किसी चीज़ में भी आगे नहीं, तो उस्ताद कहता है एक दिन तुम कोई ख़राब बंदे बन जाओगे। कर सकते हैं ना आप अपने बच्चों के लिए भी ऐसे प्रिडिक्शंस देते हैं। बिलफर्ज कल वही बच्चा जिसके बारे में उस्ताद ने ये कहा था कि तुम बहुत बिगड़ोगे और एक दिन तुम जेल में पहुंच जाओगे, वो बच्चा वाकई किसी गैंग को ज्वाइन करके जेल में पहुंच जाए, वहां जाके उसको उस्ताद की बात याद आए, जेलर को बुलाए, कहे देखो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरे उस्ताद ने तो आज से 10 साल पहले कह दिया था तुम जेल में जाओगे, जाओ उसको पकड़ लो, मुझे छोड़ दो। कोई छोड़ेगा उसको? ये है तकदीर। हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। आपको अगर पहले पता होता ना कि आपने 9 से 12 बजे एक गंदी फिल्म देखनी है और जल्दी देखो वरना अल्लाह का लिखा हुआ झूठ हो जाएगा, तो फिर तो आप मजबूर थे, फिल्म तो आपने अपनी मर्जी से देखी। हाँ, फरिश्ते जाके जब मैच करते हैं तो वो पहले से लिखा होता है तकदीर इलाही में, इस वक्त ये गंदी मूवी देखेगा। बात समझ गए? अल्लाह ने आपकी मेरी सब की तकदीरें लिख के लोहे महफूज में प्रिजर्व कर दी हुई हैं। हमारा डेली हिसाब किताब जो जाता है ना, वो जाके वहां मैच होता है, और बिल्कुल जिसको आप कहें कि आना पाई वहां सेम होता है, इक्वल इज इक्वल। अल्लाह का इल्म इतना पुख्ता, अल्लाह ताला को पहले से ही पता था हम क्या करेंगे। अगर अल्लाह ये दुनिया ना बनाता और हम सबको अपने उस इल्म इलाही के तहत जन्नत या जहन्नुम में भेज देता, बिल्कुल वही होता जब होना है, लेकिन हम मानते ना। हमने क्या कहना था? अल्लाह ने हमें मौका ही नहीं दिया। अल्लाह मौका देता तो हम बड़े अच्छे होते, दिया हुआ तो फिर भी नहीं अच्छे हो रहे। तो क्या पता चला कि तकदीर का पट्टा गले में है, लेकिन थोड़ी आजादी के साथ। इसको समझिएगा आप, देखिए कि गले में जानवर के पट्टा डाले कोई भी और उसके साथ ही उसको दीवार से हुकअप कर दे, चंद घंटे में हो सकता है जानवर मर ही जाए, गर्दन ही नहीं हिलेगी, और वो कह सकता है कि हाँ मेरे मालिक ने मुझे रस्सी से इतना करीब बांधा कि मैं मूव ही नहीं कर सका। दूसरी सूरत क्या है कि वो गले में एक पट्टा डालकर उसके साथ एक 2 फुट की चेन भी लगा देता है और उस चेन को खूंटे से बांधता है। बकरी को सोचे, अब क्या करेगी बकरी? वो 2 फुट के अंदर अंदर घूम सकती है, जहां वो 2 फुट से बाहर जाएगी तो गला खींचेगा। ये है तकदीर। बात समझे? तकदीर के बारे में दो बातिल फिरके गुजरे, जबरिया जबरिया, वो कहते हैं जबरे कुल। आपने एक जुमला सुना होगा, तकदीर बा मुकाबला तदबीर। मैंने सेम इसी मौजू पे दर्स भी दिया हुआ है और तकदीर पे हमने सेमिनार भी किया हुआ है इंग्लैंड में, ये भी मुझे याद है, 2 ढाई साल पहले ही हुआ होगा। बिलीव मी, आप दूध का दूध और पानी का पानी। और जिस तरह मुझे विरासत का मौजू मेरा फेवरेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, तलाक का मौजू, विरासत का, इस तरह तकदीर का टॉपिक भी मेरा फेवरेट है। इतना शरह सदर है इसके बारे में, 101 सवाल लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह सीधे सीधे उसके जवाब है। हम आज इस तकदीर के टॉपिक को सही ना समझकर अपनी जिंदगियों को खराब किए हुए हैं। इतनी सी बात, मेरे मियाँ को जॉब ही नहीं मिल रही, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, बच्चे का रिश्ता ही नहीं हो रहा, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, और मैंने इतनी अच्छी कोशिश की फिर मेरा बच्चा बिगड़ गया। है ना ये सवाल जवाब? हम तो आयतुल कुर्सी पढ़ के चारों तरफ फूंक मार के, बल्कि तालियां भी बजा कर आए थे, फिर भी चोर आ गया। ये सारे सवालों का जवाब आपको इन लेक्चर्स में मिलेगा। यकीन करें, हमारा इतना थोड़ा इल्म है तकदीर के मौजू पे कि मैं कहती हूँ कि ये अपनी जगह एक पढ़ने और पढ़ाए जाने वाला टॉपिक है। तो इसके ऊपर यही है, अल्लाह से कहिए कि अल्लाह जो आपने मेरे लिए लिखा मैं राजी हूँ उस पर। चंद पॉइंट जो मैंने इधर आपके लिए बनाए हैं, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। पहला सवाल आपके पास क्या है कि तकदीर पर ईमान लाने से क्या मुराद है? तो लिखिए, ईमान लाने से ये मुराद है कि नंबर एक, हर चीज़ अल्लाह के इल्म और इरादे से वजूद में आती है, हत्ता कि जो हम अपनी चॉइस से काम करते हैं ना, इख्तियारी, अल्लाह ही उसकी ताकत देता है हमें। सूरह अल-अहज़ाब 38 में इसका रेफरेंस मौजूद है। दूसरी बात लिखी है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है अल्लाह को पहले से पता था। सूरत कमर 49, फुरकान 2 और मुस्लिम 67:51। फिर अगली बात इसमें नोट कीजिए, क्यामत तक होने वाला हर काम अल्लाह ने लिखवा दिया। ये सही मुस्लिम 67:48 है। फिर नेक्स्ट थिंग लिखिए, जो वो चाहता है वो करता है और जो वो ना करना चाहे कोई कर नहीं सकता। बहुत ही प्यारी रिवायत है अबू दाऊद 4700 जाके पढ़िएगा। उबादा बिन सामत ने बेटे से कहा कि मेरे बेटे तू उस वक़्त तक ईमान की हकीकत को पा ही नहीं सकता। अब ज़रा नोट करें, वी कैंट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ ईमान, ये भी कोई चीज़ होती है, यही सब कुछ है, बाकी तो सब जमा तफरीक है। ईमान की स्वीटनेस अगर आपको नहीं मिली तो नमाज भी बोझल है और बाकी काम तो उसके बाद है। तो कहते हैं तुम ईमान की हकीकत नहीं पानते जब तक तुम ये यकीन ना कर लो, क्या? नंबर एक, जो कुछ तुम्हें हासिल हो चुका वो तुमसे रह नहीं सकता और जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हें मिल नहीं सकता। कि मैंने अल्लाह के नबी से ये सुना कि सबसे पहली चीज़ कलम बनी, अल्लाह ने कलम पैदा किया, फिर उसे कहा उक्तुब लिख, और फिर उसने कहा अल्लाह क्या लिखूँ, तो कहा क्यामत तक होने वाली हर चीज़ की तकदीर लिख दे। ऐ मेरे बेटे, बेशक मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आप फरमाते थे जो शख्स इसके सिवा किसी और अकीदे पर मर गया वो मुझसे नहीं है। ये अबू दाऊद की रिवायत 4700, जाके इसकी डिटेल पढ़िएगा। इस मौजू को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तकदीर पर ईमान लाने के कुछ अरकान हैं, अरकान तो वही बात होगी ना, बेसिक्स, तो वो नोट कीजिएगा। चार चीज़ें हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला के इल्मे कामिल पर ईमान लाना। मान लीजिए जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा, जो कल होगा, जो परसों हो चुका और जो 100 साल पहले हुआ या 200 साल बाद होगा, सब अल्लाह को पता है। आप इस मौजू को सुनना चाहें तो सूरत तलाक आयत 12, तौबा 115 और सही मुस्लिम 7 नोट कर लें, 67:37। दूसरी बात नोट कीजिएगा, दूसरा रुकन क्या है कि अल्लाह ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी है, इस पे ईमान रखना लाजमी है। बुक ऑफ डीड्स लोहे महफूज में महफूज है हमारी आपकी क्यामत तक के लिए। ये सही मुस्लिम 67:35, सूरत हज आयत 70 और इसी तरह और भी रेफरेंस है। तीसरा रुकन क्या है कि दो बातें मैं जुबानी समझाना चाहूंगी। जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, ये अल्लाह की मशीयत से तो हो रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी रज़ा भी हो। मशीयत और रज़ा का फ़र्क आपने कई जगह सबीलुल जन्ना में समझा। इतनी मिसाल ले लें कि एक नया मुल्क बनता है तो वहाँ एयरपोर्ट बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, लेकिन वहाँ जेल भी बनेंगी। भई आप जेल क्यों बना रहे हैं, पहले पैसे थोड़े हैं? नहीं, हुक्मरान को पता है पूरी कोशिश के बावजूद भी कुछ लोग रूल्स को तोड़ेंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। बात वाज़ कि आप जेल बनाने में वो खुश नहीं पर बनानी पड़ी। बिल्कुल यही बात है, दुनिया में जो अच्छे काम है ना ये अल्लाह की रज़ा से हो रहे हैं और बुरे काम अल्लाह की मशीयत से हो रहे हैं। ये सबसे सिंपल जुमला है, जो आप याद रख लें तो फ़ायदा होगा। और चौथी अहम चीज़ क्या है, अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया ना उसमें किसी को शरीक नहीं किया। यानी जिस तरह इबादत में कोई शरीक नहीं है ना, तो मेरी बिगड़ी बनाने में अल्लाह के सिवा किसी का हिस्सा नहीं। वो क्या कहते हैं, बना दे बिगड़ी मेरी, कोई नहीं बना सकता। बिगड़ी बनाना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी काम नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको समझ सकें। एक सवाल बहुत बोलते हैं लोग, क्या जब तकदीर लिखी जा चुकी तो फिर मेरे आपके अमल का क्या फ़ायदा, पूछते हैं ना लोग। मसलन गुनाह किया, मेरा नाम क्यों है जी, अल्लाह ने कहा था लिखो, तो फिर इसका एक सादा सा जवाब तो यही लिख ले कि जब आपको गुनाहों का नुकसान ना हो, गलत कामों पे पकड़ ना हो, तो फिर अच्छे कामों की जजा क्यों मांगते हैं, वो भी लिखी हुई थी, राइट? और दूसरा जवाब वही है जो पहले दे चुकी हूँ कि आपने अपनी मर्जी से नाफरमानी की है, अल्लाह ने मजबूर नहीं किया। अगर तो हमारी किताबें हमारे हाथों में दी जाती ना, ये देखो आज सुबह उठ के ये करना है, रात तक ये करना, फिर हम मजबूर थे। तो अल्लाह ने हमें नहीं बताया, लेकिन अल्लाह को पता था कि हम क्या करेंगे। बस एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक लिख ले, फायदे क्या होंगे, बिलीव मी, इसमें है स्ट्रेस और डिप्रेशन का इलाज। ईमान बिल कदर के फवायद क्या, और मुझे याद आ रहा है 19वां पारा सूरत फुरकान में, मैंने एक साल के दौरे कुरान में भी 5-6 सारे लिखाए थे। इस साल लिखाए हैं कि नहीं लिखाए, लेकिन बहरहाल मैंने उसमें भी ये लिखाए थे क्योंकि ये मौजू ज़रूरी बहुत है। बहुत सारे लोग आज सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि वो अल्लाह से नाराज़ हैं, उनको अल्लाह की बांट अच्छी नहीं लगी, मुझे बेटा ही नहीं दिया, बेटियाँ ही दे दी या कुछ भी नहीं दिया। तो लड़िए, रोइए, मरिए, जो मर्जी कीजिए, नहीं मिलना था नहीं मिला, खुश हो जाएंगे तो अल्लाह उसी में खैर डाल दे। कईयों को सब कुछ मिला हुआ है फिर भी खुश नहीं है। आपको कभी अपनी किसी चीज़ से महरूमी हो ना, तो फौरन जाके देखे जिसको मिला पहला वो कितना को खुश है, उनकी तो जान बला भाई भी है, तो खुश हो जाएंगे आप। तो लिखिएगा ईमान लाने के फवायद। नंबर एक, बंदा जब अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाता है ना तो मुतमईन हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरे लिए था, मुझे और क्या चाहिए, अल्लाह ने जब मुझे देना था तो दे दिया, तो बंदे को सुकून मिलता है। दूसरी बात यह है गम खत्म हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। तीसरी बात मुस्तकबिल की फिक्र नहीं रहती, वो अच्छा ही होगा ना जो भी होगा। फिर अल्लाह के माँ सिवा हर एक का खौफ दिल से निकल जाता है। हम कहते हैं हाय कोई लेग पुलिंग ना कर दे, मेरे मियाँ की जॉब ना चली जाए, हाय कोई मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ ना कर दे, दूसरी शादी ना हो जाए, सास तवीज ना कर दें, बेटे को मेरे बिगाड़ ना दें, कुछ भी नहीं होगा, बस आप एक अल्लाह से डरेंगे। फिर एक और फायदा क्या होता है, बुखल निकल जाता है। ये जो हम बचा बचा के रखते हैं ना मुस्तकबिल के लिए, ये सारा चला जाएगा, क्योंकि पता है कि अल्लाह ने हमारे लिए जो रखा है वो कोई दूसरा ले नहीं सकता। फिर इसी तरह सुस्ती खत्म हो जाएगी। जान की बाजी लगाकर भी बंदा कर सके तो बड़े काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी तकदीर लिखी हुई है और जो मिलना है वो मिलेगा। फिर सखी बन जाता है बंदा, वो जनरस बन जाता है हर मामले में। फिर हिकमत और इल्म के दरवाजे खुलते हैं ईमान बिल कदर से। और सच्ची बताऊं तो उम्मत की तकदीर बदल जाती है जब तकदीर पर ईमान आ जाता है। और जब एक इंसान इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है ना तो तहम्मुल आता है। आप फील करें ना कब एकदम आग लगती है, सर से पांव तक आग लग गई, कब लगी, जब आपको लगा किसी ने आपके साथ ज्यादती की, ऐसे ही है ना। तो ज्यादती तो वो कर ही नहीं सकता, अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी हुई थी, अल्लाह उसको रोक सकता था, अल्लाह ने नहीं रोका। एकदम वो कहते हैं गुब्बारे में से हवा निकलेगी। और सबसे बड़ी बात है जिंदगी के बड़े खतरात और चैलेंजेस का हौसला पैदा हो जाता है। और भी आओ बिस्मिल्लाह, और भी आ जाओ, कोई आपको बुरा कह रहा है जरा और भी तो कहिए ना, डिक्शनरी में भी और भी अच्छे बुरे बुरे लफ्ज हैं वो भी तो बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। रंज गम तकलीफ सब खत्म हो जाती है और फिर इंसान का हौसला बुलंद होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस वक्त आपको कोई ना कोई गम सता रहा है कोई ऐसा कि जिसको नहीं हो, वो मेरा हाल मैं ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि बेगम कर दे अल्लाह आप सबको भी और मुझे भी कर दे। लेकिन यकीन करें इस वक्त कोई भी सोचे माल का, जान का, औलाद का, कुछ भी जो गम इस वक्त आपके दिल को लगा है, आप जरा उसको सोचें इस वक्त, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कहें खुद को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मिसाल है माली गम है, घर बिक जाएगा, सोफे बेच देंगे, गाड़ियां बिक जाएंगी, तो क्या हुआ, लोग झुग्गियों में भी रहते हैं। रीजनिंग तो करके देखें, हमें खौफ पता के अंदेशे है, जैसे आज भी बात हुई ना शैतान की, खौफ सदा करता है, हाय होगा फकर, वो है ना अशैतान युजीदुकुमुल फक्र, हाय गरीबी बच्चों की कैसे, हाय इस महीने की फीस कहाँ से जाएगी, बच्चे कुछ भी नहीं होगा, इधर से उठाएंगे पाकिस्तान के किसी गाँव में ले जाएंगे तो इनशाला जितने में इधर गुजारा है बुरा हो रहा है वहां अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग करें, यानी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि रीजनिंग करें। ओके और क्या होगा, हाँ मियाँ दूसरी शादी कर लेंगे तो अच्छी बात है, खाना नहीं रोज बनाना पड़ेगा, एक दिन कोई और बनाएगा, अच्छा अब क्या होगा, इस पे बहुत खुश हुए आप सारे, कुछ के तो अभी भी बेचारे खुद ही बनाते हैं। यकीन करें जिसको कहते हैं ना कि ट्राई फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये रजीत बिल्लाह रब्बन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, कोई बीमार होता है तो हमें गम लगता है ना, हाय ये वो, ज्यादा क्या होगा, मर जाएगा तो मरना तो है ही, नबी के बच्चे फौत हुए, नबी की बीवियां फौत हुई, नबी के रिश्तेदार फौत हो गए, हमारे भी चले जाएंगे। आप यकीन करें कि अपने आप को पहले ही पन काम रखें, कूल रहें, जुमला लिख लें, तकदीर से लड़ नहीं सकते, एक्सेप्ट इट, यू कैंट फाइट या बीट द तकदीर, तो एक्सेप्ट इट। जितना रिलैक्स होकर ढीला छोड़ के इंजेक्शन लगवाएंगे ना उतनी दर्द कम होगी। हम अपनी तकलीफों में जिस्म अकड़ा लेते हैं, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में, उतनी फिर चोटें ज्यादा पड़ती हैं। एक ही गम दो मुख्तलिफ लोगों को आए ना तो मैंने कई दफा ऑब्जर्व किया, एक हंसता है फिर वो गम आ गया, होता रहे मुझे क्या, और एक है हाय फिर वो बिस्तर पे चला जाता है। फील करें ठंड है, ठंड है, ठंड है, ठंड है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड, और कि इट्स ओके, इट्स ओके। आप यहाँ बैठे भूख लगी है, भूख लगी, भूख लग रही, बड़ी लग रही, लेकिन भूख लगी क्या, नहीं लगी तो नहीं लगी, रोजे में क्यों सब्र आ जाता है, एक्सेप्ट करते हैं ना हम लोग। तो बहरहाल हक तो इसका अदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब कम अज़ कम हमें इतना ज़रूर इससे फ़ायदा हो सकना चाहिए कि हमारी तकदीर अल्लाह के हाथ में, लोगों के हाथ में नहीं है, तो फिर उसको मनाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हज़रत उमर की एक दुआ भी बड़ी प्यारी है कि अल्लाह अगर तूने हमें बदबख्त लिखा है तो उसको बदल दे, तेरे हाथ में उम्मुल किताब है और उसको अच्छा कर दे, और अगर तूने हमें खुशबख्त लिखा है तो उसको साबित कर दे। तो हम भी यही करेंगे। और आज की दुआ भी तो याद है ना, पढ़ें ज़रा मिल के। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन जहदिल बलाई व दरक शिकाई। दारा का भी आता है और दरक भी आता है, मोस्टली दारा की शिकाई। व शमातत इलादाई व सूइल कदाई। खुश रहे, अल्लाह के साथ राजी रहे। एक आखिरी छोटा सा लफ्ज़ है जो आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा होगा, और वो अलवला वलबरा। ये साइड पे लिखा है मैंने इसलिए कि इसमें नहीं आता, बट ये ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। किसी से दोस्ती इसलिए करिए कि वो अल्लाह से दोस्ती रखता है, अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का फरमाबरदार है। और कोई अपना बेशक हो, सगा खून का रिश्ता, लेकिन गलत चीज़ की तरह बुलाए तो छोड़ दीजिए। इस पे एक पूरी बुक है तफीमु सुन्ना सीरीज की, इसी नाम से अलवला वलबरा। कभी वक्त मिले तो पढ़ लें। और आज ख़ास तौर पे जब हम ख़ानदान और रिश्तेदारियों को निभाने की खातिर अल्लाह को नाराज़ करते हैं, तो ये हमें इंशाल्लाह सीधा करेगी। इसी में फिर कुफार से दोस्तियाँ, अहले बिदा से दोस्तियाँ, गुनाह के कामों में क्या करें, किसका साथ दें किसका ना दें। फिर इसी में सहाबा के साथ बुग़्ज़ आता है। कई लोगों ने अपने कुछ नामों की वजह से सहाबा को गालियाँ देना तक शुरू कर दी। तो इज़ अ कम्प्लीट टॉपिक। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इसका हक़ अदा करने की तौफीक दे। जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको समझिए, निभाइए, और फिर उसके बाद अल्लाह से कहें कि अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। और इंशाल्लाह जब अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया तो फिर कोई भी आपका हाथ नहीं छोड़ सकता। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।